بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھ لو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدين قابل احترام حضرت مولانا احمد ٹنکاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس مجلس میں موجود تمام مسلمان دینی بھائیوں، میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. گزشتہ منگل کو، یعنی چار دن پہلے، میں رات کو بلساڑ شہر میں کسی پرسنل لاء کے عنوان پر بیان کر رہا تھا. مجھے کچھ معلوم نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بدھ کے دن فجر کی نماز کے بعد تسبیحات پوری کر رہا تھا تو کسی نے مجھے بتایا کہ آج تو پوری رات لوگ سوئے نہیں. میں نے کہا آج کیسی، کون سی ایسی بات ہو گئی کہ آج پوری رات لوگ سوئے نہیں؟ تو کہا آپ کو معلوم نہیں، وہ دو گاندھی جی بدل گئے، ایک لال رنگ کے ایک بلو رنگ کے. بس اسی فکر کے اندر آج پوری رات لوگ سوئے نہیں ہیں. اس کے بعد بدھ، جمعرات، جمعہ، تین دن گزرے، آج چوتھا دن ہے. میڈیا میں، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، یعنی یہ اخبار، نیوز پیپر جو نکلتے ہیں، یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ٹی وی وغیرہ پر، اور سوشل میڈیا، تینوں پر سے جو ایک اہم ترین مسئلہ تھا، سمجھو کہ بالکل غائب ہی ہو گیا. دونوں اہم ترین مسئلے سمجھو کہ غائب ہی ہو گئے، یعنی مسلمان بھی اس کو بھول بھلا گئے. اس کا دل کے اوپر بہت اثر ہے کہ کہیں ہمارے یہ حالات جو ہم اتنی تیزی سے محض پیسوں کے خاطر جو اہم مسئلے تھے اس کو بھول گئے، کہیں اس حدیث کا مصداق تو نہیں؟ ولکن اخاف علیکم الدنیا فتنافسوا فیہا. کیا ہم اس حدیث کے مصداق تو نہیں بن رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے اوپر دنیا کے معاملے کا خوف ہے، کہ دنیا اور دولت اور پیسوں کو تم اتنا زیادہ محبوب اور پیارا سمجھو گے اور اس میں ایسے رچ بس جاؤ گے کہ دین کی ساری باتوں کو بھول جاؤ گے. پچھلے چار دن کا منظر ہمارے سامنے ایسا آ رہا ہے کہ سب جگہ سے مسلم پرسنل لاء کا اتنا اہم ترین مسئلہ، شریعت کی حفاظت کا مسئلہ، دین ایمان کی حفاظت کا مسئلہ، گویا کوئی مسلمان بھی بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ وہ پرسنل لاء کا سلسلے کا کیا ہوا. بہت اثر ہے اس بات کا طبیعت کے اوپر. ایسے حالات میں آپ اس بستی کے، کرنج کے مسلمانوں نے آج کا پروگرام رکھا. میں، ہمارے میزبان مولانا عارف صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ یہ چار دن سے پیسوں کے چکر میں سب لوگ دین و ایمان کے اہم ترین مسئلے کو بھول بھلا گئے. اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت ہمارے جمع ہونے کو اور اس چند باتوں کو بے انتہا قبول فرمائے, اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا دے. ہوئے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسلم پرسنل لا اور یہ اس کی چروڑ مومنٹ جو کچھ تحریک چل رہی ہے, یہ ہے کیا چیز. بعض مرتبہ کچھ الفاظ کچھ شبد ایسے ہوتے ہیں جو غلط فہمی پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں. میں آج کل سب جگہ ایک بات بہت تاکید سے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو انگریزی شبد چل رہا ہے, انگریزی لفظ مسلم پرسنل لا, تو اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی راجکارن کا پرشن ہے, پولیٹیکل ایشیو ہے, سیاسی مسئلہ ہے. بہت سارے ہمارے مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں, لیکن میں آپ سب کو ایک صحیح بات بتاؤں, ہمارے حضرت شیخ الحدیث مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم نے ابھی نوساری کے ایک بڑے اہم پروگرام میں ایک کسی کا ایک جملہ نقل کیا تھا, وہی آپ کو بھی نقل کر دوں کہ مسلم پرسنل لا کا مطلب ہے ایمان اور اسلام, اور سمان سول کوڈ کا مطلب ہے کفر اور بے دینی. اس کو کوئی معمولی مت سمجھو, یہ بہت امپورٹنٹ, بہت ہی اہم, بہت ہی نازک مسئلہ ہے. یعنی مسلم پرسنل لا کا مطلب ہوتا ہے ہماری مکمل شریعت, ہمارا مکمل دین, ہمارا مکمل اسلام, ہمارا مکمل دین. اور اس کو کوئی بھی آدمی راجکارن, سیاست, پولیٹیکل ایشو نہ سمجھے, یہ مسئلہ ہمارے ایمان, اسلام, شریعت اور دین کا مسئلہ ہے. اور ابھی آپ سن رہے تھے مفتی زکریہ صاحب نے جو تمہیدی کلمات کہے, اس میں بھی آپ نے سنی یہ بات کہ ہماری شریعت کے جتنے قانون ہیں اس کو انگلش میں بولیں گے تو لا کہیں گے, گجراتی میں بولیں گے تو قاعدہ قانون کہیں گے, اردو میں بولیں گے تو مسئلے مسائل کہیں گے. ہماری شریعت کا ہر قانون, ہر مسئلہ, ہر چیز یہ ایسے ہے ہی نہیں کہ دنیا کا کوئی انسان اس کو بدل سکے. یہ تو اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی چیز ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جب تک اس دنیا کو باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا ہے وہاں تک کے حالات, اس کے بعد کے حالات, اس ورلڈ کا, دنیا کا فیوچر, مستقبل, بھوشیہ سب اللہ کے سامنے تھا, اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنائے ہیں, اور اسی قانون کو ہم مسلم پرسنل لا سے تعبیر کرتے ہیں. اب تھوڑا سا میں چند شبدوں میں آپ کو اس کا اتہاس بتاؤں, مختصر تاریخ اس کی. آپ سب تقریباً ایک بات تو جانتے ہیں کہ اس ملک میں, بھارت میں, انڈیا میں 700 یا 800 یا 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی. اب مسلمانوں کی جب حکومت رہی تو یہاں پر مسلمانوں کا بنایا ہوا اسلامی قانون, اسلامی قاعدے اس پورے ملک میں, بھارت, اکھنڈ بھارت میں چلتے تھے. اکھنڈ بھارت کا میننگ, جب بنگلہ دیش पाकिस्तान, ये सब दिल्ली राजधानी के अंडर में, मातहती में आते थे। उस अखंड भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर मुस्लिम राजाओं के बनाए हुए कायदे कानून जो करीब करीब इस्लामी कानून से मिलते जुलते थे, अक्सर बेशतर ज्यादातर इस्लामी कायदे कानून से मिलते जुलते थे, वो पूरे अखंड भारत के अंदर चलते थे। अब आप लोगों की जानकारी है ही, लेकिन सिर्फ ताजा करता हूं। ये जो कायदे कानून है और उस कायदे कानून के लिए जो कोर्ट बनती है, अदालत बनती है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है, हिस्से हैं। एक है क्रिमिनल कोर्ट, जिसको गुजराती में कहते हैं फौजदारी कोर्ट, फौजदारी अदालत। ये क्रिमिनल कोर्ट जितनी भी है उसके अंदर लड़ने झगड़ने, मारामारी, कत्ल, खून, मर्डर, इस तरह के मुकदमात उसमें जाते हैं। एक दीवानी अदालत होती है, उसके अंदर ये जमीन वगैरह के काई किस झगड़े जाते हैं। एक फैमिली कोर्ट होती है, उस फैमिली कोर्ट के अंदर हस्बैंड वाइफ, मियां बीवी, माँ बाप औलाद, इस किस्म के झगड़े जाते हैं। एक लेबर कोर्ट होती है, मजदूरों के मुताल्लिक, काम करने वालों के मुताल्लिक, चाहे वो मजदूर खेत में काम करते हो या सरकारी नौकर हो या किसी कंपनी में नौकरी करते हो, किसी इदारे में नौकरी करते हो, ये सब चीजें जाती है लेबर कोर्ट के अंदर। अब ये लेबर कोर्ट, ये तो आप शुक्र अदा करो मौलवियों का, उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करो, क्या आधी रात को किसी के मगज में आया कि हमारे इमाम साहब चले ऐसे नहीं है, तो फज्र की नमाज में आके कह दे इमाम साहब पहली तारीख से छूटा दबे। आज तक कोई आलिम दीन कोर्ट में केस करने गया नहीं, इल्ला माशाल्लाह। अगर जाता तो आपको लेबर कोर्ट क्या चीज है उसका पता चलता। जमीनों के झगड़े चलते रहते हैं इसलिए दीवानी कोर्ट भी मालूम है, मारामारी के केस चलते हैं इसलिए क्रिमिनल कोर्ट भी मालूम है, तलाक वगैरह के झगड़े चलते रहते हैं इसलिए फैमिली कोर्ट भी मालूम है, लेकिन लेबर कोर्ट जनरली मालूम नहीं। तो ये जितने भी इस तरह के झगड़े जाते हैं वो लेबर कोर्ट के अंदर जाते हैं। इस तरह के कोर्ट के अलग अलग हिस्से हैं। तो हमारे इस भारत में, इंडिया में 700-800 या 1000 साल तक मुसलमान राजाओं के, बादशाहों के जरिए से यहां इस्लामी कानून पूरे मुल्क के अंदर चलता रहा, फौजदारी कोर्ट में भी, दीवानी कोर्ट में भी, फैमिली कोर्ट में भी, लेबर कोर्ट में भी, हर चीज के अंदर इस्लामी कानून चला। लेकिन एक बात जो मैं सिर्फ मस्जिद में नहीं कह रहा हूं, आजकल मैं ये बातें वकीलों को भी कह रहा हूं, जजों को भी कह रहा हूं, यानी जहां हिंदुओं का मजमा होता है वहां भी कहता हूं और चैलेंज के साथ कहता हूं कि भारत के 700-800 या 1000 बरस के इतिहास में, हिस्ट्री में, तारीख में, जब मुसलमानों का इस्लामी कानून इस पूरे भारत में चलता था, उस वक्त पर भी यहां रहने वाले नॉन मुस्लिम के वास्ते, यानी गैर मुस्लिमों के वास्ते, खासकर उनकी फैमिली मैटर में, कुटुंबिक झगड़ों के अंदर उनको आजादी थी कि वो अपने धर्म के मुताबिक अपने पंडितों से, साधुओं से, शास्त्रियों से अपने अपने धर्म के मुताबिक फैसला करवावे, उसकी आजादी थी। मुसलमानों के 700-800 1000 बरस के इतिहास में आपको ये नहीं मिलेगा कि किसी गैर मुस्लिम ने, चाहे बुद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उनके कुटुंबिक झगड़ों में, फैमिली मैटर में, खानदानी मसले के अंदर उन पर जबरदस्ती की गई हो कि तुमको इस्लामी कानून के मुताबिक फैसला करना पड़ेगा, ऐसा एक सबूत भी कोई इतिहास का, हिस्ट्री का, तारीख का बतला नहीं सकता। हमने आजादी दी थी, मुस्लिम बादशाहों ने आजादी दी थी कि हर मजहब वालों को आजादी है, बल्कि बाज मुस्लिम बादशाहों की हिस्ट्री और इतिहास में तो ये मिलता है कि उन्होंने अदालतों में, कोर्टों में बाकायदा काजी साहब के बाजू में एक कुर्सी लगवाई थी कि अगर कोई हिंदू या बुद्ध या ईसाई आवे, सिख आवे, और उनका कुटुंबिक झगड़ा है, फैमिली मैटर है, तो वहां उनके धर्म के धर्म गुरु आके बाजू में बैठेंगे और वो फैसला करेंगे और मुस्लिम काजी उसको जो है नाफिज और जारी करेगा। इतनी आजादी थी मुसलमान राजाओं के जमाने के अंदर। फिर हुआ ये कि हमारे भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आई थी, वो तो व्यापारियों की एक कंपनी थी, वो तिजारत और बिजनेस करने के लिए इंडिया आए और फिर धीरे 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 इन्होंने हमारे देश पर तिजारत से आगे बढ़कर के सत्ता और हुकूमत में कब्जा जमाना शुरू किया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी और दूसरे भी उसमें आजू बाजू के देश के कुछ व्यापारी लोग उसमें शामिल थे यूरोप के, ये जो इंडिया आई थी तिजारत के लिए आई थी, लेकिन इन्होंने यहां आकर के धोखेबाजी के जरिए से, गद्दारों को हाथ में लेकर के धीरे 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 हमारे भारत के ऊपर कब्जा जमाना शुरू किया। 1757 ईस्वी में जब पलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के सामने हार गए, और हार की वजह भी कुछ गद्दार लोग थे, तो उनका कब्जा भारत के उस इलाके में, बंगाल इस तरफ के इलाके में अंग्रेजों का कब्जा जमना शुरू हुआ, और अंग्रेज इस मुल्क में जो आए हैं तो इनकी हुकूमत के जमने की शुरुआत बंगाल के इलाके से हुई है। तो 1757 ईस्वी में पलासी के मैदान में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया गद्दारों की मदद से, और बंगाल के इलाके के अंदर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1765 ईस्वी में जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था वहां उन्होंने अपनी अदालतें, अपनी कोर्ट कायम करना शुरू किया। ये तारीख बराबर जहन में रखना। 1757 में बाकायदा उनकी सरकार बनी बंगाल से। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपनी अदालतें, अपनी कोर्ट बनाई अलग अलग जगहों के ऊपर, और उस कोर्ट के अंदर अंग्रेज जज बिठाए। लेकिन ये बात भी सुन लो कि 1765 ईस्वी के अंदर इन्होंने जब अपनी कोर्ट बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उस कोर्ट में बैठने वाले जज अंग्रेज होते थे, लेकिन वो अंग्रेज जज जितने भी फैसले करते थे वो मुसलमानों के बनाए हुए इस्लामी कानून के मुताबिक फैसला करते थे। 1765 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कोर्ट कायम की, लेकिन उसमें कानून तो चलता था, मुस्लिम राजाओं का बादशाहों का बनाया हुआ इस्लामी कानून, और उसी के मुताबिक वो अंग्रेज जज फैसला करते थे। 1765 से लेकर 1862 ईस्वी तक, 1765 से 1862 ईस्वी तक पूरे 100 साल के अंदर 3 साल कम, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो कोर्टें बनी उसमें जो अंग्रेज जज होते थे वो हमारे इस्लामी कानून के मुताबिक बराबर फैसले करते रहे। 97 साल मुसलसल ये निजाम चला। इस दरमियान के अंदर एक हादसा ये हुआ कि 1857 ईस्वी में जब विप्लव हुआ, गदर हुआ, तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत का संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास लेकर के अपने हाथ में ले लिया। वहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी मुल्क के अंदर अपनी हुकूमत, सत्ता, कोर्ट, अदालत सब चलाती थी। 1857 ईस्वी के अंदर उस गदर या जंगे आजादी अव्वल उसकी नाकामी के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत का कब्जा अपने हाथ के अंदर ले लिया। फिर 1862 में अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारा क्रिमिनल लॉ यानी फौजदारी कानून पूरे भारत के अंदर से खत्म किया। 1862 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूरे भारत में से हमारा फौजदारी कानून क्रिमिनल लॉ खत्म किया। लेकिन फैमिली लॉ और उसके अलावा दूसरे सब चीजों में इस्लामी कानून के मुताबिक कामकाज चलते रहे। फिर हुआ ये कि 1937 का जमाना, उसमें एक मुकदमा हो गया था, और वो मुकदमा ऐसा हुआ था कि एक मुसलमान का इंतकाल हुआ, उसकी लड़की ने कोर्ट के अंदर केस किया है कि मैं मुसलमान हूं, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया तो मेरे बाप के माल में से लड़की होने के नाते से मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, और अपने भाई के ऊपर उसने दावा किया बहन ने। तो भाई ने कोर्ट के अंदर जवाब ये दिया, एफिडेविट ये की कि हम, मैं और मेरी बहन, हम मजहब के एतबार से मुसलमान हैं, लेकिन खानदानी एतबार से उसने हिंदुओं के एक खानदान का तस्करा किया, राजपूत या चौहान इस वक्त मुझे जहन में नहीं, उसका तस्करा किया कि हम असलन खानदान और फैमिली के एतबार से फुलाने हिंदू खानदान में से हैं, अगरचे हमारे बाप दादा मुसलमान हो गए थे। और फिर उसने आगे एफिडेविट में यह लिखा कि हमारे खानदान का ताल्लुक चूंकि हिंदुओं के एक खानदान से है, और हमारे खानदान की जो रिवायत है जिसको गुजराती में प्रणालिका कहते हैं, रिवायत का, उस प्रणालिका या रिवायत के मुताबिक लड़की को बाप के माल में से हिस्सा नहीं दिया जाता। ये उस भाई ने एफिडेविट की, इसलिए मेरी बहन को मेरे बाप के माल में से हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। अब जब यह मसला अंग्रेज अदालत में गया, अंग्रेज जज के सामने, अंग्रेजों के यहां इस वक्त पर भी जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनका बंधारण है, संविधान है, और जो अंग्रेजों के लॉ और कानून है, उसमें रोमन लॉ का बहुत बड़ा असर रहा है, रोमन लॉ का, और खास तौर पर रोमन के जमाने की जो रिवायतें हैं, जो प्रणालिका है, इसका आज भी अंग्रेजों के लॉ के ऊपर बहुत बड़ा असर है। आज भी जब अंग्रेज जज के पास ये मुकदमा गया तो उस अंग्रेज जज ने उसके ऊपर फैसला लिखा कि अगर चाहिए दावा करने वाला मुसलमान एक मुसलमान खानदान है और उसमें से एक लड़की है और जिसके विरुद्ध दावा किया है वो भी मुसलमान है, अब मुझे फैसला तो ये करना चाहिए कि बहन को मीरास में हिस्सा मिलेगा, लेकिन इसने रेफरेंस दिया है अपने खानदान की रिवायत का, कुटुंबिक प्रणालिका का, इसीलिए उस खानदानी रिवायत के एतबार से मैं ये फैसला करता हूं कि इस लड़की को उसके बाप के माल में से मीरास नहीं मिलेगी। ये उस अंग्रेज जज ने फैसला किया। जब फैसला किया तो उस जमाने के हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाए किराम फौरन हरकत में आए और पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने जबरदस्त एहतजाज और हंगामा किया, जिसमें पेश पेश थे अबुल महासिन मौलाना सज्जाद रहिमहुल्लाहु ताला, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे अकाबिर उस वक्त आगे आगे रहे और उन्होंने पूरे मुल्क में बड़ा जोरदार मुतालबा किया, इतना जोरदार मुतालबा किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हुई मुसलमानों के लिए शरीयत एक्ट बनाने के वास्ते, और उस जद्दोजहद और मेहनत की बरकत से 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से एक कानून बना, और उस कानून का खुलासा यह था कि 15-16 बातें उसमें बाकी रखी गई, बाकी सब निकाल दी गई, निकाह है, तलाक है, खुला है, मीरास है, परवरिश है, इस तरह के 16 मसले, ईला है, जिहार है, मुबारात है, 16 मसले बाकी रखे गए कि इन 16 मसलों के अंदर दो पार्टी अगर मुसलमान है, दावा करने वाले और जिसके विरुद्ध दावा है, दोनों मुसलमान है, तो उस सूरत में शरीयत और कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला किया जाएगा। वो 1937 के शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के अंदर ये चीज अंग्रेजों ने जारी की। उसके 2 साल गुजरने के बाद 1939 में एक दूसरा कानून अंग्रेजों ने बनाया, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये 1939 के अंदर बना। इस कानून के अंदर क्या बात आई हमारे उलमा और मुफ्तियाने किराम जानते हैं, उसी जमाने में हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी अल हीलतुन नाजिजा, ये इसी 1939 के डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट की बुनियाद पर यह किताब लिखने की जरूरत पेश आई। उस कानून के अंदर यह बात आई कि अगर कोई मुसलमान शोहर बीवी को छोड़ के कहीं गायब हो जावे, भाग जावे और उसका पता ही नहीं चलता, तो 4 साल अगर ऐसे गुजर जावे तो वो मुस्लिम लड़की अदालत में जाकर के अपना निकाह तुड़वा सकती है। वो लड़की मुसलमान अदालत, वो लड़की जाएगी मुसलमान लड़की और कोर्ट को कहेगी कि मेरा शौहर 4 साल से गुम है और मैं क्या करूं, तो कोर्ट दोनों मियां बीवी का निकाह तुड़वा देगी। अब ये मसला थोड़ा लंबा है, हमारे हनफी मसलक के अंदर इसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, 90 साल, 99 साल, 120 साल, 110 साल, ऐसी लंबी लंबी रिवायत है हमारे यहां। लेकिन सबसे पहले हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर कदम उठाया, बाद में हमारे सारे अकाबिर उलमा मुत्तफिक हो गए कि इस मसले में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के कॉल पर हम फतवा देंगे, अमल करेंगे कि अगर कोई मुसलमान औरत का शोहर गुम हो जाए, गायब हो जाए और 4 साल तक वो नजर ना आवे, तो अब थोड़ी बहुत मुद्दत इधर उधर कमोबेश करके, हालात देख करके, मुफ्तियाने किराम, काजी हजरात, शरी पंच वाले, महकमे शरिया वाले, दारुल कजा वाले मियां बीवी में तफरीक और जुदाई करवा सकते हैं। ये कानून बना 1939 में, जिसको कहा जाता है डिसोल्यूशन एक्ट ऑफ मुस्लिम मैरिजेस। दूसरी बात उसमें ये आई थी कि अगर कोई मुसलमान शोहर शादी करने के बाद 2 बरस तक लगातार अपनी बीवी को खर्चा पानी कुछ नहीं देवे और बीवी को ऐसे ही छोड़ देवे शादी की, अब किसी वजह से भी 2 बरस तक वो खर्चा नहीं देवे, तो वो बीवी अदालत में जाएगी और अदालत को कहेगी कि मेरा शोहर मुझे खर्चा नहीं देता, 2 साल हो गए, तो उस कोर्ट को राइट होगा कि वो उस शोहर को मजबूर करे या दोनों में जुदाई करवा दे, इसी कानून की वजह से। तीसरी बात उसमें ये आई कि अगर कोई मुसलमान शोहर 1 से ज्यादा शादी करता है, वो मसला भी अभी हमारी सरकार ने एफिडेविट में उठाया है कि अगर कोई मुसलमान शोहर 1 से ज्यादा शादी करे और 2 या 3 या 4 बीवियों के दरमियान इंसाफ न करे, एक बीवी पर ज्यादा ध्यान देता है, ज्यादा तवज्जो देता है और दूसरी बीवी के हक का लिहाज न करे, तो वो जो औरत बिचारी मजलूम है, परेशान है, वो अदालत में जाकर के अपने लिए इंसाफ मांग सकती है। इसी तरह किसी ने शादी कर ली लेकिन वो शोहर के बदन में कोई चेपी रोग है, मुताद्दी बीमारी है, या ये कि उसके बदन के अंदर कोई छुपी हुई बीमारी है जिसकी वजह से वो औरत का हक अदा नहीं कर पाता, जिस्मानी शारीरिक सुख नहीं दे सकता, तो ऐसी सूरत के अंदर भी वो औरत ये 1939 वाला डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट ऑफ मुस्लिम मैरिजेस उसके अंडर में जाकर वो औरत इंसाफ मांग सकती है, निकाह को खत्म करवा सकती है, तुड़वा सकती है। और ये जितनी भी फैसिलिटी इस कानून में लाई गई वो तकरीबन 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 हमारे इस्लामी कानून से ली गई है। फिर हुआ ये कि हमारा मुल्क आजाद हुआ और मुल्क का बंधारण और दस्तूर बना, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। जब मुल्क का दस्तूर तैयार हुआ तो उस मौके के ऊपर यही 1937 का शरीयत एक्ट, शरीयत एप्लीकेशन है, उसको बाकी रखा गया और बाकी रख करके ये कहा गया कि ये 15-16 चीजों में जब दोनों पार्टी मुसलमान होगी और मामला कोर्ट के सामने आवे तो कोर्ट फैसला करेगी इस्लामी कानून के मुताबिक। अब उस सिलसिले के अंदर कोर्ट को कौन बतावे कि मुस्लिम कानून क्या है, तो उसमें आज तक क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि जहां वारसा वेचड़ी का मसला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट क्या कहती है कि तुम्हारे किसी मुस्तनद दारुल इफ्ता से फतवा लिखा करके ले आओ, हम उस फतवे के मुताबिक चुकादा दे देंगे। और ऐसा होता रहा, इसलिए कि वो वारसा वेचड़ी का जो कानून है इतना आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल कानून है, इसीलिए कोर्ट के जज सीधा कह देते हैं कि तुम्हारे कोई बड़े मुफ्ती साहब के पास सर्टिफाइड दारुल इफ्ता से फतवा लिख कर के ले आओ, हम उसके मुताबिक चुकादा और फैसला दे देंगे। इस सिलसिले में कई साल पहले एक मरतबा हमारे यहां बारडोली में एक यतीम बच्चों का मसला उठा था, उनकी मीरास का। उस जमाने में हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे हजरात डाभेल में मौजूद थे। तो मसला आया डाभेल में कि भाई इस तरह यतीम बच्चों की मीरास का मसला है, तो हजरत मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों ने पूरा मसला तैयार किया और उस वक्त के हमारे डाभेल के मोहतमिम हजरत मौलाना अहमद बुजुर्ग साहब रहमतुल्लाह अलैह, इस वक्त के मोहतमिम साहब के दादा, उन्होंने उसको गुजराती में तैयार किया और उसके ऊपर सही सिक्के हुए। हमारा नवसारी प्रांत उस वक्त गायकवाड़ी हुकूमत में आता था, और गायकवाड़ी हुकूमत का जो कैपिटल था वो वडोदरा, और उसकी हाईकोर्ट भी बड़ौदा में होती थी। तो उलमाए किराम का तैयार किया हुआ फतवा जब बड़ौदा में गायकवाड़ी हाईकोर्ट के अंदर पेश किया गया, तो आज तक उसके रेफरेंस सबूत मौजूद है कि गायकवाड़ी हाईकोर्ट के हिंदू जज ने उसके नीचे एक लाइन लिखी कि इतना अच्छा फैसला करना तो मेरे बस में भी नहीं है, इतना अच्छा वारसा वेचनी का फैसला करना मेरे बस में भी नहीं है, यह कहकर के उसने कोर्ट की स्टाम्प लगाई और कह दिया कि इसी फैसले को जारी कर दो। और आज तक यही होता रहा कि जब किसी मुसलमान का वारसा वेचनी का मसला अदालत में जाता है तो अदालत ये कहती है कि जो तुम्हारे मशहूर मशहूर बड़े बड़े दारुल उलूम हैं, बड़े बड़े मुफ्ती साहब हैं, उनके पास तुम लिखवा के ले आओ, सही सिक्के करवा के ले आओ, उसके मुताबिक हम फैसला कर देंगे, कोई बात नहीं होगी। इस पर मुझे एक और चीज याद है, अभी चंद साल पहले मेरे एक चचा का इंतकाल हुआ, तो उन चचा की कोई नरीना औलाद नहीं थी, यानी लड़के नहीं थे, सिर्फ बेटी। तो हमारी शरीयत का मीरास का कानून क्या है कि अगर अकेली लड़की हो मरने वाले की तो भाइयों को भी मीरास में हिस्सा अस्मा होने के नाते से मिलता है, ये कुरान का कानून है। अगर मरने वाले का लड़का हो तो भाइयों को मीरास नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सिर्फ लड़की हो, लड़का एक भी न हो मरने वाले का, तो उस मरने वाले के माल में से भाइयों को भी अस्बा होने के नाते से मीरास में हिस्सा मिलेगा। तो हमारे चचा का इंतकाल हो गया, उनकी प्रॉपर्टी थी, तो हमारी एक चचाजात बहन ने कहा कि तो सब मेरा। तो हमारे मरहूम वालिद साहब सात चौपड़ी पड़े थे, लेकिन बहुत अच्छे आलिमे दीन थे, उन्होंने एक कागज लिखा, बहुत अच्छा गुजराती राइटिंग उनकी बहुत अच्छी थी, माननीय बारडोलीना मामलतदार श्री एग्जीक्यूटिव जज अने मामलतदार श्री। फिर उसके बाद नीचे कुरान की आयत का हवाला लिखा कि हमारी इस्लामी शरीयत मुजब मारा भाई श्री नो इंतकाल थी गया, मृत्यु पामिया, अने हमारी शरीयत ना कानून मुजब ज्यारे मरनार नो कोई छोकरो न हो तो छोकरी ना साथे साथे भाइयों ने पण वारसाई नो हक लागे छे, आ अमारी शरीयत नो कानून छे। ये लिख करके अपनी सिग्नेचर करके मामलतदार एग्जीक्यूटिव को सौंप दिया, उसने वो पढ़ा और पढ़ करके फौरन तस्लीम कर लिया, और उसने कहा कि ये बिल्कुल सही है इन्होंने जो लिखा है, और उसके मुताबिक मरने वाले के माल में से भाइयों को भी मीरास में हिस्सा दिया जाएगा। तो आज तक यही होता रहा हमारे मुल्क के अंदर कि कोई मीरास का मसला गया तो वो यही कहेंगे किसी मुफ्ती साहब से लिखवा के ला। अब रहा तलाक वगैरह का मसला, तो इन मसाइल के अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर थोड़ी गड़बड़ियां आई, क्योंकि ये थोड़ी बहुत उनकी खोपड़ी में उतरने वाली चीज थी, मीरास तो समझ में आती नहीं कैसे तकसीम करने की। मैं कहा करता हूं लतीफे के तौर पर, उलमा समझेंगे कि जो मीरास का रुकू है युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन, वो तरावी में हमारे हाफिजों को पढ़ना भारी पड़ता है, गुचवाई जाते कितने भी याद करके जावे, और मुसलमान लोगों को अमल करना भारी पड़ता है, हुफाज को तरावी के अंदर पढ़ना भारी और मुसलमानों को उसके ऊपर अमल करना भारी। तो जब अंग्रेजों ने 1862 के अंदर भारत में से मुसलमानों का फौजदारी क्रिमिनल कानून खत्म किया था, तो उसकी जगह के ऊपर इंडियन पिनल कोड उन्होंने दाखिल किया है, और आज तक हमारे मुल्क में फौजदारी कानून में 1862 से आज तक वही इंडियन पिनल कोड चला आ रहा है। जिस किसी का मारा मारी का कोई केस गया हो उनको पूछ लो कि भाई वो कलम लगाते, पीआई कलम लगाएंगे तो वहां लिखेंगे इंडियन पिनल कोड ना आधार है, कलम नंबर आ, कलम नंबर आ, कलम नंबर आ, इस तरह वो केस को फिट करते हैं। ये जो इंडियन पिनल कोड आया, ये आया 1862 में हमारा मुस्लिम क्रिमिनल लॉ खत्म करके उसके बदले में, और वो आज तक मुल्क में चला आ रहा है। अब आजादी के बाद जब ये मंजर सामने आया कि 15-16 चीजों के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ को बाकी रखा गया, तो उसके अंदर ये तलाक थोड़ी बहुत चीज ऐसी थी कि जो उनको कुछ बुझ थोड़ा बहुत समझ में आ गए। तो अब ये लोग समझते कहां से हैं, जज लोग, तो मोमेडन लॉ के नाम से बुक छपती है। और मैं आपको बतलाऊं, ये मोमेडन लॉ जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट का एक नया नाम है, शरीयत एक्ट का नया नाम है मोहम्मदन लॉ या मोमेडन लॉ, इसको इंग्लिश के अंदर एक पारसी ने लिखा है, पारसी ने उसको लिखा, और उसकी सरनेम भी अजीब बात मुल्ला है। उसने पूरी वो बुक लिखी और हमारे जज लोग उसी को पढ़ करके चुकादे ज्यादातर देते हैं। और दूसरी बात ये हुई कि हिदाया जो हमारे फिके हनफी की मुस्तनद किताब है, उसका भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है, और वो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जज लोग अपने सामने रखते हैं और उसको भी सामने रख करके फैसले देते हैं। ऐसी 2-3 किताबें, एक और मुस्लिम राइटर की मोहम्मदन लॉ है, ये 3 किताब, पारसी की, एक मुसलमान की और हिदाया, ये 3 किताबों को सामने रख करके जज लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ के सिलसिले के अंदर कोर्टों के अंदर फैसले और चुका दे देते हैं। अब ये तलाक का मसला, इस तलाक के मसले को लेकर इस वक्त पूरे मुल्क में आवाज लग रही है कि भाई ये तलाक, 3 तलाक होनी नहीं चाहिए, और उसमें 2-4 मुसलमान औरतों को खड़ा करके, इस वक्त जिस मुसलमान औरत ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट की उसका नाम है शायरा बानू, शायरा बानू नाम की एक मुसलमान औरत का अपने शौहर से झगड़ा था, तलाक हो गए और वो गई कोर्ट के अंदर। और आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना कोई आसान काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वकील होते हैं, वो वकील लोगों की फी इतनी हाई हुआ करती है कि वो सिर्फ बात करने, सलाह मशवरे के भी पैसे लेते हैं, इतनी महंगी महंगी उनकी फी होती है। उन सब हालात को देख करके अंदाजा ऐसा है कि उस बहन को शायद खड़ा किया गया है कि वो खड़े होकर के जो है ये काम करे। अब ऐसी 2-5 औरतें कोर्ट में जावे तो उसकी वजह से क्या 25 करोड़ मुसलमानों के ऊपर से इस्लामी शरीयत को खत्म किया जावे, ये कहां का इंसाफ हुआ? सीधी सीधी बात कि 2-4 औरत अगर जाकर के सरकार के सामने एफिडेविट कर दे कि हमको ये तलाक पसंद नहीं है, तो हिंद भारत के अंदर 25 नहीं तो 22 करोड़ ले लो, 20 करोड़ ले लो, तो ऐसी 20-22 औरतों की वजह से 20 करोड़ मुसलमानों के ऊपर से शरीयत के कानून को बदल देना, उसमें तारीफ कर देना, ये कहां का इंसाफ है? यही बात हम सरकार को कह रहे हैं कि हमारा कानून अल्लाह के यहां से आया हुआ कानून, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कोई अल्लाह के कानून में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जो बंधारण की, संविधान की 44वीं कलम का ये लोग हवाला देते हैं, वो तो गाइडलाइन है। भविष्य में, फ्यूचर में कोई नया कानून बनाना हो तो किस तरह नया कानून बने, उसकी गाइडलाइन है। अब मैं आपको कहूं, वो बंधारण की जो 44वीं कलम का रेफरेंस इस वक्त दे रहे हैं, उसके अंदर जहां समान सिविल कोड की बात लिखी है, वहां दारूबंदी की बात भी लिखी हुई है उसी 44वीं कलम के अंदर, के देश के अंदर पूरे मुल्क में दारूबंदी को मजबूत किया जाए, ये भी 44वीं कलम में है। अब ये दारूबंदी एक ऐसी चीज है कि इसका पूरे मुल्क में रहने वाला कोई भी नागरिक, कोई भी शहरी, कोई भी सिटीजन उसका विरोधी नहीं है, यानी मजहब के एतबार से हर मजहब वाले, अभी आपने नहीं देख लिया पिछले दिनों गुज़िश्ता इतवार को कि इतनी बड़ी रैली निकली गांधीनगर में, किस बात के ऊपर? कि भाई दारूबंदी का कानून कड़क से कड़क करो, मजबूत से मजबूत करो। क्या मतलब? और मुतालबा करने वाले जो वहां मौजूद थे वो सब के सब नॉन मुस्लिम थे, और उन्होंने जाकर के धरना दिया, विरोध किया, ये किया वो किया, यहां तक कि गुजरात सरकार के एक मिनिस्टर ने उनसे मुलाकात की, बातचीत की। क्या मतलब निकला? कि इस मुल्क का रहने वाला हर नागरिक, हर शहरी, हर सिटीजन अपने धर्म के एतबार से, अपनी जिंदगी के नफा नुकसान के एतबार से, वो ये चाहते हैं कि 44वीं कलम के अंदर जो दारूबंदी की बात लिखी हुई है वो पूरे देश के अंदर पक्की मजबूत दारूबंदी होनी चाहिए। अब जिसको पूरा मुल्क चाह रहा है उसकी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं, और जिसको मुल्क की अक्सरियत की एक बहुत बड़ी तादाद यानी मुसलमान नीच आ रहे हैं, और दूसरे भी बहुत सारे लोग नीच आ रहे हैं, उस समान सिविल कोड को मुल्क में लागू करने की कोशिश करना, ये हकीकत के अंदर बंधारण, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के साथ एक खेल है, एक तरह का खिलवाड़ हो रहा है। अब बाज लोग ऐसे मौके पर एक नादानों जैसी बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जब 1862 में क्रिमिनल लॉ खत्म कर दिया गया, फौजदारी कानून खत्म किया और उसकी जगह इंडियन पिनल कोड आया, तो फिर अगर ये फैमिली कानून भी खत्म कर देवे, पर्सनल लॉ भी खत्म करे, उसमें मुसलमानों को विरोध और मुखालफत नहीं होनी चाहिए। हम एक सवाल ऐसे लोगों से करते हैं कि कोई आदमी बेचारा ऐसे रूम में, ऐसी कोठड़ी में रहता हो कि जहां बेचारे को खुली हवा मिलती ना हो, और ज्यादा उसको वहां खराब हवा, बदबू वाली हवा उसको मिलती हो, और थोड़ी बहुत अच्छी हवा बाहर की आ जाती हो, तो क्या उस आदमी को हम ये कहेंगे कि ये थोड़ी बहुत अच्छी हवा आ रही, वो खिड़की भी बंद कर और तुझे 100% ये गंदी हवा में जकड़ा करके रहना है तुझे? ये कोई मशवरा दे सकता है उसको? बल्कि ये कहेंगे कि जो थोड़ी बहुत अच्छी हवा आदि आ रही ना, वो आने दो, उसी में भलाई है। वो थोड़ी बहुत अच्छी हवा भी बंद हो गई तो हो सकता है कि ये बेचारा उस गंदी हवा में, बदबू वाली हवा के अंदर गुंगड़ा करके मर जाएगा, घुट घुट के मर जाएगा। सीधी सीधी बात कि मुल्क के 90% कानून में समान सिविल कोड है, दीवानी कोर्ट में, इसी तरीके से लेबर कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, हर तरह के कानून में 90% समान सिविल कोड है। 10% के अंदर फैमिली लॉ में, खानदानी कानून के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ है। तो इतनी सी खुली हुई फ्रेश ठंडी हवा आ रही है तो फिर उसके ऊपर क्यों जबरदस्ती करते हैं कि यह भी बंद कर दिया जाए? और दूसरी बात, जो हमारी बहनें ऐसा चाहती है कि हमको ये कानून पसंद नहीं है, तो हमारी तो सीधी बात, ला इकराह फिद्दीन, हम दीन के बारे में किसी पर जबरदस्ती नहीं करते। अगर इनको शरीयत का कानून पसंद नहीं है तो हम जबरदस्ती उनसे मनवाएंगे नहीं ला इकराह फिद्दीन, बल्कि हम ऐसी बहनों को ये कहेंगे जाओ देश में 1954 का, 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है। सिर्फ इतना होता है कि जो रजिस्ट्रार होता है, जो मैरिज की नोंदणी करता है, लग्न नोंदणी जहां होती है वहां जाकर इतना कहना पड़ता है कि हमारे लग्न को, हमारी शादी की नोंदणी करो 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट के मातहत, फिर उसमें जो कानून है उस कानून के मुताबिक जियो। हम किसी पर दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं करते कि तुमको इस्लामी कानून को मानना ही मानना है, अमल करना ही करना है, हम किसी पर जबरदस्ती नहीं करते। अगर तुमको नहीं मानना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में चले जाओ, और 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट में वो जैसा चाहते हैं कि अदालत तलाक दिलावे, अदालत तफरीक करवावे, कोर्ट करे, कोर्ट तलाक को मान्य रखे ना रखे, सारी उनकी दिमाग की चीजें वहां मिलेगी उनको। और ऐसी सूरत में उनकी वारसा बेचनी के लिए भी फिर शरीयत का कानून नहीं आएगा, बल्कि उस सूरत में 1925 का बना हुआ सक्सेशन एक्ट के जिसके अंदर वारसा बेचनी की पूरी तरतीब ही अलग है, उस तरतीब के मुताबिक उनकी वारसा बेचनी भी होगी। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे कि इस्लामी कानून के मुताबिक वो फैसला करवा दें। बाकी हम सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह दिलो जान से ईमान रखते हैं कि हमारी शरीयत, हमारा कानून, हमारा दीन मुकम्मल सही दीन है और उसमें किसी तरह की तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है और कयामत तक उसमें कोई जरूरत नहीं है। एक हदीस में आपको सुना, हुआ ये कि हिजरत के 8वें साल मक्के मुकर्रमा फतह हुआ। वहां तक मक्का काफिरों की सरकार में था, कुरैश उस पर रूलिंग करते थे, कुरैश रूलर थे, कुरैश की सरकार थी मक्का के ऊपर। हिजरत के 8वें साल अल्लाह ताला ने मक्के मुकर्रमा को फतह करवाया और वहां अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी हुकूमत कायम हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक केस आया, अजीबोगरीब केस। एक खानदान है छोटा सा, कबीले बनू मखजूम। उस कबीले बनू मखजूम की एक लड़की ने चोरी की और चोरी में वो पकड़ी गई और उसका केस हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। गवाह भी थे, सबूत भी हो गया, फैसला जाहिर था जो कुरान में है, अस्सारिकु वस्सारिका फक्तउ अयदियहुमा जजा बिमा कसबा नकालम मिन अल्लाह। चोरी मर्द करे कि चोरी औरत करे, उनका हाथ काट दिया जाएगा। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला फरमाए कि इस औरत का हाथ काटना है। अब कबीले बनू मखजूम के लोगों को पता चला कि हमारी फैमिली की, कुटुंब की एक लड़की ने चोरी की, चोरी साबित हो गई, उसका हाथ कटेगा। तो हाथ कटेगा तो पूरे मक्का में सबको पता चल जाएगा कि इस कुटुंब की, इस फैमिली की एक लड़की चोरी में पकड़ी गई, उसका हाथ काट दिया गया। तो कहा पूरे मक्का में हमारी बदनामी हो जाएगी कि हमारे खानदान वाले चोर निकले। तो ये लोगों, उस खानदान के बड़े बूढ़े सब जिम्मेदार लोग जमा हुए, का किसी तरह भी ये हाथ काटने की सजा रुकवानी चाहिए। का कैसे रुकवावे? तो का हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश करते हैं, सिफारिश मीनिंग लागूक लगवाते हैं हुजूर के पास, जैक लगवाओ कि हुजूर ये जो हाथ काटने की आपने सजा का फैसला किया है ना, जरा इसको इधर उधर कर दो। शुर्राए हदीस उस मौके पर लिखते हैं कि बात दरअसल ये थी कि अभी इनको ये कानून मालूम नहीं था कि शरीयत के कानून में, शरीयत के हुक्म में कोई जो है इस तरह की लागवक और सिफारिश चलती नहीं है, मालूम नहीं था, इसीलिए वो लोग मशवरा करने के लिए बैठे। वरना हमारी शरीयत का कानून क्या कि देखो जितने भी क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल कानून है, उसका ताल्लुक सरकार से होता है और जितने फैमिली मसले हैं इसका ताल्लुक पब्लिक और अवाम के साथ हुआ करता है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की फतह के लिए गए तब ये किस्सा हुआ। अब कानून समझा, अगर कोई इस तरीके का किस्सा हो जाए, चोरी का, जिना का, शराब का, तोहमत का, तो इस तरह के कानून के अंदर क्या होता है कि अगर काजी के टेबल के ऊपर केस चला गया, मुकदमा अदालत में चला गया, तो फिर कोई सिफारिश, कोई लागवक चलेगी नहीं। और अगर काजी के सामने अदालत में वो मुकदमा गया नहीं, गवाहों ने देखा, साक्षियों ने देखा, और अब ये मामला लेकर के अदालत में जाने वाले हैं, तो अगर कोई आदमी उन गवाहों को समझावे, भाई अदालत में मत जाओ ना, इस आदमी ने, बेचारे ने पहली मर्तबा भूल की है, माहौल की वजह से वो फंस गया, जीना हो गया, गलत दोस्तों की दोस्ती की वजह से जीना हो गया, अदालत में मत ले जाओ वरना काजी साहब 100 सपाटे मरवाएंगे, अगर कुंवारा है और शादीशुदा है तो पत्थर मार के मरवा डालेंगे, बेचारे को जरा माफ कर दो। तो वहां हदीस के शुर्रा लिखते हैं कि अगर वो आदमी आदि नहीं है, यानी आदत नहीं है, एकाद मरतबा भूल हो गई तो गवाहों को समझा बुझा करके केस रोक लेना चाहिए, और अगर आदत बन चुकी हो उसकी शराब की, नऊज बिल्ला जिना की, नऊज बिल्ला दूसरे कामों की, चोरी की, तो फिर गवाहों को भी समझाना नहीं चाहिए, बल्कि वो केस कोर्ट में जाने दो ताकि उसको सजा होवे और आइंदा ऐसा काम वो ना करे। ये जाब्ता मुहद्दिसीन ने लिखा है। अब इन हजरात को मालूम नहीं कि ये तो हद का मामला है, लिहाजा वो लोग मशवरा करने बैठे कि हुजूर को जरा लागवग लगावे, चेकपॉट लगावे। तो सवाल ये आया कि हुजूर के पास कौन लागवग लगवाने जावे, इसलिए कि ऐसे मौके के ऊपर एक खान लोग ढूंढते हैं, उसका नाम है ओर खान। ये बहुत बड़ी खान है ओर खान भी, कि जिसके जरिए से बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। तो मशवरा करने बैठे कि किसके जरिए हुजूर को जैक लगवावे। ऐसे मौके पर देखते हैं कि जिसके पास अपने को काम निकलवाना है उनका कोई पहचान वाला, दोस्ती वाला, कोई करीबी, तो सबने ये फैसला किया कि हजरत उसामा इब्ने जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु हिब्ब रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे, बड़े लाडले, बड़े चहीते का उनके जरिए से लागवग लगवाओ, सिफारिश करवाओ उनके जरिए से। और हजरत उसामा हुजूर के कितने महबूब है, वो सारे मक्का वालों ने देख लिया था कि जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करने जा रहे हैं तो उस दिन हुजूर की ऊंटनी पर यही हजरत उसामा इब्ने जैद पीछे बैठे हुए थे, इतने हुजूर के प्यारे लाडले। तो इन लोगों ने हजरत उसामा बिन जैद को कहा कि ये लड़की से जरा भूल हो गई है, चोरी हो गई है, जरा हुजूर को कहो ना कि हाथ नहीं कटवावे, बिचारी लड़की का हाथ बच जाएगा। अंदर खाने डर ये कि हाथ कट गया तो सब जगह मशहूर हो जाएगा कि कबीले बनू मखजूम की लड़की ने चोरी की तो हमारे खानदान की बदनामी होगी। हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह ताला न तैयार हो गए सिफारिश करने के लिए और गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जाकर के हुजूर को सिफारिश की, हुजूर वो कबीले बनू मखजूम की लड़की से गलती हो गई, आप जरा उसके हाथ काटने की सजा को माफ कर दो। तो हदीस में है कि जब हजरत उसामा की जुबान से ये बात सुनी तो सुनते ही इतने प्यारे, इतने लाडले, इतने चहीते उसामा के फतेह मक्का के दिन वो साथ बैठे हैं हुजूर के उठनी पर और जिंदगी का आखिरी लश्कर हुजूर ने उनको अमीर बना के रवाना फरमाया, जिसमें हजरत अबू बकर, हजरत उमर जैसे बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, उस लश्कर का अमीर हजरत उसामा को हुजूर ने बनाया, इतने चहीते इतने लाडले। लेकिन जैसे ही उन्होंने शरीयत के एक कानून और मसले में सिफारिश की, हदीस में आता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक बदल गया। जैसे आदमी गुस्से में आता है कैसा लाल चेहरा हो जाता है, हुजूर का चेहरा मुबारक, रंग मुबारक बदल गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की हक में, अल्लाह के कानून में तुम सिफारिश करते हो, अल्लाह की हद में, कानून में तुम सिफारिश करने के लिए आए, किसी हाल में ये सही नहीं। और हुजूर समझ गए कि इनको लोगों ने चढ़ा करके भेजा है, समझा करके भेजा है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, एक बयान किया है और उस बयान में इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुमसे पहले जमाने में जो लोग थे वो हलाक हो गए। और हलाक क्यों हुए? अगर कोई बड़े खानदान का, शरीफ घराने का, ऊंची फैमिली का कोई आदमी कोई गुनाह करे तो वो उसको छोड़ देते थे, माफ कर देते थे। जिसको हमारी गुजराती में कहते हैं ढांक पिछोड़ा कर देते हैं, कोई बड़े घराने में हो जावे तो। और अगर कोई नीचे घराने का, कोई नीचे खानदान का, गरीब घर का आदमी कोई गुनाह करे तो वो उसको सजा दिया करते थे। बड़े घर वाला करे तो छुपाओ, सजा मत दो, और गरीब करे तो सजा दो उसको। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बयान में फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करती तो मैं अपनी बेटी फातिमा के हाथ को भी कटवा लेता। हुजूर ने इरशाद फरमाया। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मखज़ूमिया औरत के हाथ काटने का हुक्म दिया। हुजूर का ये गुस्सा देखकर हजरत उसामा जैसे लाडले भी सहम गए। कहने लगे, हुजूर मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से मेरे लिए माफ़ी मांगो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई। मेरे भाइयों, ये वाकिया हमको बतलाता है कि अल्लाह के कानून के अंदर रद्दो बदल करना ये तो नबी के इख्तियार में भी नहीं हुआ करता। कुरान में साफ हुक्म मौजूद है, या अय्युहन नबी लिम तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मरदात अज़वाजिक। ए नबी, अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया उसको तुम क्यों हलाल कर दो। हम सरकार को यही बात कहते हैं। मैं कई मजलिसों में कह चुका कि हुकूमत को हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो कानून है वो कानून तो नबी भी नहीं बदल सकते, तो दुनिया की कोई हुकूमत तो क्या बदल सकेगी उसको। नबी को भी राइट नहीं, नबी को भी पावर नहीं दिया अल्लाह ने कि वो अल्लाह का भेजा हुआ कानून बदल ले, तो फिर दुनिया में किसी और को तो बदलने का कोई हक ही नहीं पहुंचता। लेकिन मेरे दीनी भाइयों, मैं आपको एक खास नसीहत ये करना चाहता हूं कि अगर हम सरकार से, कोर्ट से, हुकूमत से मुतालबा करें और लोकशाही तरीके से, शांति से और बंधारण में रह करके हम लड़त चलावे, जैसे कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो इसकी मूवमेंट चल रही है, तहरीक चल रही है, जो उसकी चरवड़ चल रही है, एकदम शांति के साथ बंधारण में रह करके लोकशाही ढब से, ये हमारे बुजुर्गों की रिवायत रही है। तो हम मुसलमान भाइयों से ये कहेंगे कि मुसलमानों, अगर हम सरकार से मांगनी करें, कोर्ट में हम लड़ाई करें, तो उससे हमारा मसला पूरा हल होने वाला नहीं है। हमारा मसला तो कैसे हल होगा, जब हमारे मुसलमान भाई बहन इस्लामी शरीयत पर अमल करने वाले बन जावे, ये इसका परमानेंट हल है। हम जो कोर्ट में गए, अभी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़त दे रहे हैं, ये तो उसका इमरजेंसी हल है। जैसे एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल में पहले इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करते हैं, ये इमरजेंसी हल है उसका, इमरजेंसी सॉल्यूशन। और परमानेंट सॉल्यूशन क्या, कि हमारे मुसलमान भाई शरीयत को सीख करके उस पर अमल करने वाले बन जाए, ये इसका परमानेंट हल है। इसीलिए हम मुसलमान भाइयों को यही कहेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ मीनिंग मुकम्मल शरीयत, मुकम्मल शरीयत सीखो, मुकम्मल शरीयत पर अमल करो। अगर हम अमल करने वाले बनेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई हुकूमत हमारी शरीयत के कानून को बदल सकेगी नहीं। मैं तो आजकल हमारे मुसलमानों को यूं कह रहा हूं, मुकम्मल शरीयत सीखना हमारी जिम्मेदारी है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, फैमिली एक्ट, शरीयत एक्ट में ये जो 15-16 मसले आते हैं, वो 15-16 मसलों की जानकारी भी 99% मुसलमान को नहीं है। 99% मुसलमान को इन 15-16 मसले की भी जानकारी नहीं है। और माशाल्लाह आपके करीब के अंदर फलाहदारेन हैं, दूसरे मदरसे हैं। मैं आप सबको अदब से दरख्वास्त करता हूँ, उलमाए किराम को, मुफ्तियाने किराम को लाओ। और ये 15-16 मसले एक मजलिस में कोई आपको नहीं समझा सकेगा, कम से कम उसके लिए 16 मजलिस रखो अलग अलग, कि एक मजलिस में तलाक, दूसरी मजलिस में फस्के निकाह, तीसरी मजलिस के अंदर मीरास, चौथी मजलिस के अंदर ईला, पांचवी में जिहार, छठी में मुबारात, सातवीं में हिजानत, जितने भी मसले आते हैं इस मुस्लिम पर्सनल लॉ में, इस कानून के अतबार से वो 16 मसलों के लिए 16 मजलिस कायम करो, उसकी हकीकत समझो और हकीकत समझकर उसको मुसलमानों के अंदर आम करने की ज़रूरत है। ये वक्त का अहम तरीन तकाजा है। सीधी सी एक छोटी सी बात कहकर के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तलाक का मसला ले लो, आज कितने मुसलमान जानते हैं कि अपनी बीवी को 3 तलाक देना गुनाह कबीरा है? कितने मुसलमान जानते हैं बताओ? अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक देना नाजायज और हराम काम है, कितने मुसलमान जानते हैं? जरा झगड़ा हुआ नहीं कि धड़ाधड़ बीवी को तलाक देना शुरू कर देते। हजरत मुफ्ती तकी साहब मद्दजिल्लाह ने लिखा है कि आपस में मर्द मर्द में झगड़ा होता है तो गालियां देते हैं, और बीवी से झगड़ा होता है तो तलाक देते हैं, तो तलाक को भी हमने एक गाली समझ रखा है। और जिस तरह गालियां बोलने पर उतर आते हैं तो जितनी बड़ी से बड़ी दे सके इतनी देते हैं बगैर स्टॉप किए हुए, तो तलाक देने पर भी आते हैं तो नॉन स्टॉप तलाक देते ही चले जाते हैं। बाजों का तो मुंह बंद करना पड़ता है, भाई 3 नहीं 33 हो गए, अब तो रुक जा और अब तो बंद कर। मुसलमान को मालूम ही नहीं कि तलाक 3 एक साथ दे देना गुनाह है, हराम काम है, नाजायज काम है, ये मां जानता ही नहीं मुसलमान, और तलाक के पावर को गलत इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से तलाक की बदनामी होती है। तो ये जो बदनामी हो रही है हम लोगों के गलत तर्ज अमल की वजह से बदनामी हो रही है। इसलिए मुसलमान भाइयों, शरीयत ने सॉल्यूशन बतलाए हैं मियां बीवी के झगड़ों के, उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़े तो एक तलाक सिर्फ, उसकी भी इतनी सारी शर्तें, एक तलाक सिर्फ देने की इजाज़त दी और उसको तलाक अहसन अच्छा तरीका बतलाया, और उसमें भी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जगह निकाह आसानी से हो सकता है। लोग ये समझते हैं कि जब तक 3 नहीं देंगे वहाँ तक दूसरी जगह शादी ही नहीं हो सकती, यही गलत बात मालूम है। ऐसा मसला है ही नहीं शरीयत में। एक तलाक दे दी साफ साफ लफ्जों में, इद्दत गुजर गई, उसके बाद उस लड़की का दूसरी जगह निकाह हो सकता है। ऐसा है ही नहीं कि 3 तलाक देंगे तो ही दूसरी जगह निकाह होगा। इसलिए शरीयत के मसले से हम लोग नावाकिफ है। जरूरत है इसकी कि हम लोग अलग अलग मजलिस कायम करें, शरीयत के अहकाम को पढ़े और समझे और उलमाए किराम की रहबरी लेवे और उसके मुताबिक हमारे माशरे की इसलाह की जाए। अल्लाह सुबहानहू व तआला हम सबको शरीयत मुतहरा की अहमियत नसीब फरमाए, शरीयत पर यकीन अता फरमाए और अल्लाह से दुआ करें। मैं सबको आजकल 2 दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। वादा करो कि कम से कम 1 मरतबा 2 रकात सलातुल हाजा पढ़ेंगे, कहो इंशाल्लाह, और ये दुआ करेंगे कि अल्लाह कयामत की सुबह तक इस मुल्क में इस्लामी शरीयत को पूरे पूरे तौर पर हर एतबार से महफूज और सलामत रखना। दुआ करोगे इसकी? और दूसरी दुआ तमाम मुसलमानों ने आलम के वास्ते और साथ साथ के अंदर जो अल्लाह आपको तौफीक दे सदका खैरात भी करो। हम पर कोई पर्सनल बला मुसीबत आती है तो हम सदका करते हैं बला दूर करने के लिए। आज हमारी पूरी शरीयत के ऊपर मुसीबत आई है, लिहाजा मुसलमान भाइयों सदका खैरात करो कि अल्लाह इस बला मुसीबत को दूर कर देवे और अल्लाह ताला हमारी शरीयत की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। करेंगे ये काम तो फिर आज की हमारी मजलिस, हमारा कहना सुनना इंशाल्लाह बहुत मकबूल होगा। अल्लाह ताला हम सब के इस बैठने को, कहने सुनने को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना की 2-4 नसीहत तो करवा दो।